मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 22 सितंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम है मयूर राठौर भोपाल मध्य प्रदेश से, सूर्य प्रताप दिल्ली से और प्रवीण यादव आपका गांव है बरिया मऊ उत्तर प्रदेश से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन ब्रैकेट रेगुलेशन ब्रैकेट क्लोज अमेंडमेंट एक्ट इस विषय पर बात करूंगा, लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। आज के अखबारों में आपको पढ़ने को मिला होगा, आप जानते हैं कि जो कृषि से संबंधित विधेयक थे वो पारित हो चुके हैं। यहाँ मैं आप लोगों की स्पष्टता के लिए एक बात खासकर बताना चाहूँगा कि हम लोग कृषि से संबंधित तीन विधेयकों की बात कर रहे थे। याद रखिए कि इसमें से केवल अभी दो विधेयक ही पारित हुए हैं। जब हम कहते हैं लोकसभा से पारित हो गए तो एक सदन से पारित होता है, जब हम कहते हैं राज्यसभा से पारित हो गया तो एक सदन से पारित होता है, जब हम कहें कि राज्यसभा से भी शब्द जोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि लोकसभा से भी पारित हो गया है, और अगर हम कहते हैं कि संसद से पारित हो गया तो इसका मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने उसे पारित कर दिया है, और जैसे ही राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर कर देंगे वो जो विधेयक है अधिनियम बन जाएगा। इसके बारे में आप सब जानते हैं। तो अभी जो दो विधेयक संसद ने पारित किए, यानी कि लोकसभा तो पहले पारित कर चुकी थी, राज्यसभा ने भी पारित किए हैं, केवल दो ही पारित किए हैं, एक विधेयक पारित नहीं हुआ है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक है, क्योंकि इस पर बहस पूरी नहीं हो पाई थी इसलिए अभी यह पारित नहीं हुआ है। अपने दिमाग में इस तथ्य को आप रखिएगा फिलहाल, हालांकि उम्मीद है कि वह भी विधेयक पारित हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब खासकर राज्यसभा में दोनों विधेयकों को रखा गया और जब पारित होने की बात आई तो आप देख रहे हैं कि चैनल्स पर भी काफी दिखाया जा रहा है, अखबारों में भी काफी आ रहा है कि संसदीय मर्यादा का उल्लंघन हुआ। जो विपक्ष के सदस्य थे उन्होंने ये मांग की थी कि राज्यसभा में अब ये जो विधेयक है इन पर मतदान कराया जाए, और शायद उनकी बात नहीं मानी जा रही थी तो उसको लेकर के फिर हंगामा होने लगा, और सच पूछे तो उस हंगामे ने एक प्रकार से अमर्यादित रूप भी ले लिया। देखिए, जब हम सदन की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं, तो उसके दो पक्ष स्पष्ट रूप से हमारे सामने होने चाहिए। पहला है संसद की मर्यादा, है ना, जो वहां पीठाधीश अधिकारी हैं, अधिकारी नहीं कह रहे, जो पीठाधीश जो व्यक्ति हैं, महानुभाव हैं, चाहे वो सभापति हों या उपसभापति हों या स्पीकर हों या डिप्टी स्पीकर हों, है ना, उनकी अपनी एक मर्यादा है, उनकी अपनी एक गरिमा है, और लोकतंत्र में असहमति तो होनी ही होनी है। लोकतंत्र का तो जीवन ही असहमति है, तर्क है, बहस है, अगर वही नहीं है तो फिर लोकतंत्र नहीं है। लेकिन जो असहमति है, या यूं कह लीजिए, चलिए हम थोड़े से कड़े शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, विरोध है, उसका प्रदर्शन मर्यादित तरीके से भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं संसदीय मर्यादा का जबरदस्त रूप से उल्लंघन ही होता हुआ दिखाई देता है। और आपने देखा कि उसको लेकर के फिर हमारे जो हमारे उपसभापति जी हैं, सभापति जो राज्यसभा के हैं, उन्होंने 8 सदस्यों को निलंबित भी कर दिया है। ये उसका एक पक्ष है। इसका फ्रेंड्स जो दूसरा पक्ष है, मुझे लगता है कि वो भी आप लोगों के ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि सदस्यों ने मांग की थी ध्वन की इस पर मतदान कराया जाए, उनकी वह मांग स्वीकार नहीं की गई और इन विधेयकों को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। ध्वनि मत का मतलब है कि जब ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये तो विधेयक पारित ही हो जाएगा, तो आपने देखा है कि जितने भी हमारे संसद सदस्य होते हैं वो सामने की मेज को थपथपा देते हैं, तो उसी को कहते हैं ध्वनि मत से, यानी कि अब ये पारित हो गया, अलग अलग मतदान कराने की जरूरत नहीं है कि हर कोई वोट डाले। इसके बारे में विपक्षों का यह कहना है कि सरकार ने ऐसा इसलिए किया है, ध्वनि मत से इसको पारित किया है, क्योंकि राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं था और राज्यसभा में ये दोनों विधेयक गिर जाते हैं, यानी कि पारित नहीं हो पाते, और अगर राज्यसभा में पारित नहीं हो पाते हैं तो सीधी सी बात है कि फिर ये विधेयक नहीं बन पाता। हाँ, ये बात जरूर है कि चूंकि जो विधेयक है ये सरकार का विधेयक है और ये राज्यसभा में पारित नहीं होता तो सरकार के जीवन काल पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखिए कि अगर सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक लोकसभा में गिर जाता है तो सरकार गिर जाएगी, उसका मतलब है कि उसका बहुमत नहीं रह गया है, लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है, ये विधेयक गिर जाता और फिर से जो कुछ भी आगे होता वो कार्यवाही होती। अब यहां देखिए कि एक सवाल खड़ा होता है कि जो लोकतंत्र है वह बेसिकली तो बहुमत पर ही आधारित शासन होता है, सरकार भी वही बनाती दल बनाती है जिसका बहुमत होता है। अविश्वास प्रस्ताव जो पारित होते हैं वो बहुमत के आधार पर ही होते हैं कि किसको कितने वोट मिले, तो संख्या तो सबसे बड़ा आधार लोकतंत्र का है ही। तो ऐसे में एडिटोरियल में ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये सच है, क्या ये सही है कि ध्वनि मत से पारित करा दिया जाए, जबकि दिखाई दे रहा है कि राज्यसभा में सरकार के लिए इन विधेयकों को पारित करना इतना आसान नहीं था। हालांकि कल आपने टीवी चैनल्स पर, हमारे दूरदर्शन पर देखा होगा कि हमारे जो मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे पास इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और राज्यसभा में भी यह विधेयक बहुत आराम से पारित हो जाता, तो इसीलिए आरोप गलत है कि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं था। चलिए, सरकार अपनी तरफ से यह बात कर रही है, कह रही है, लेकिन इनफैक्ट अगर इसे ही कार्य रूप में परिणित कर दिया जाता तो शायद संवैधानिक जो हमारे प्रावधान हैं उनका ज्यादा अच्छे तरीके से पालन हो पाता। तो यह एक घटना है जो आपके दिमाग में दर्ज होनी चाहिए। दोस्तों, खासकर इस तरह की घटनाएं मैं आपके सामने इसलिए रखता हूं कि आप पॉलिटी को समझ सकें। कॉन्स्टिट्यूशन को आप समझ रहे हो, पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं, समझते ही हैं, लेकिन पॉलिटी को भी समझ सकें। और जब आप अपने आंसर राइटिंग में इन पॉलिटी का उल्लेख करते हैं, अब देखिए ये पॉलिटी है, इसके लिए कहीं संविधान का कोई क्लॉज नहीं है जिसको लेकर के आप इसकी व्याख्या कर सकें, ये पॉलिटी है कि आप उसको किस तरीके से व्यवहार में ला रहे हैं। राजनीतिक प्रावधानों को या संवैधानिक प्रावधानों को व्यवहार में लाना ही फिर पॉलिटी है, और व्यवहार में आप उसको अपने ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। तो जब आप इस तरह की घटनाएं याद रखते हैं तो अपने आंसर राइटिंग में जब उपयोग करते हैं, इस तरह की घटनाओं के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं, तो डेफिनेटली एग्जामिनर पर उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस तरह की जब घटनाएं, महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती हैं, घटित होती हैं, तो उन घटनाओं को मैं आपके सामने ले आता हूं। फ्रेंड्स, फिर आपने एक न्यूज पढ़ी भी और सुनी भी कि सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो जो अभी रबी की जो फसल आएगी उसके लिए बकायदे उन्होंने घोषित कर दिया है। अब एग्जामिनेशन में इस तरह की बातें नहीं पूछी जाती हैं कि कितनी कीमत उसको बढ़ाई गई, लेकिन सरकार बार बार दो तीन चीज़ों के लिए आश्वासन दे रही है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो जारी रहेगा, उसको खत्म करने का कोई विचार नहीं है। जो मंडियां अभी काम कर रही हैं वो मंडियां भी बनी रहेंगी, उनको भी खत्म नहीं किया जाएगा। सरकार जो अनाज खरीदती है, सरकार वो अनाज खरीदती ही रहेगी। किसानों के साथ जो अनुबंध करेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां या दूसरे लोग, उसमें केवल उनकी फसल का ही अनुबंध होगा, जमीन के बारे में कोई अनुबंध नहीं होगा। यानी कि किसानों के जमीन पर जो उनका मालिकाना हक है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। बार बार सरकार इसका आश्वासन दे रही है और आज के अखबारों में पूरा फुल पेज सरकार की तरफ से विज्ञापन भी आया है। मैं चाहूंगा कि आप उसमें से अच्छे पॉइंट्स नोट कर लें, वो सरकार की तरफ से दिया गया एक प्रकार से आश्वासन है। राइट फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और आज का जो मुख्य विषय है मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये है विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020, फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन ब्रैकेट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। सबसे पहले यह जो एक्ट है वो 76 में बना था, 2010 में फिर उसमें संशोधन किया गया, और 2020 में अब फिर से इसमें संशोधन किया गया है। अब देखिए कि मैंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण आप यूं कह लीजिए कि विषय है, वो किस रूप में विषय है। सामान्य तौर पर आपको लगेगा कि बहुत से इस तरह के एक्ट तो पारित होते रहते हैं, तो एग्जामिनेशन की दृष्टि से शायद महत्वपूर्ण न हो, लेकिन मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक प्रकार से पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर सुन चुके हैं, वो थोड़ा सा एनजीओ वाले लेक्चर को याद करें। हमारे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, स्वैच्छिक संगठन जिन्हें हम कहते हैं, गैर सरकारी संगठन जिन्हें हम कहते हैं, एनजीओ के नाम से ये शब्द ज्यादा पॉपुलर है, उस लेक्चर को याद करने की कोशिश करें। उस लेक्चर के तहत मैंने बहुत विस्तार के साथ ये बताया है कि हमारे जो एनजीओ हैं अभी खासकर बहुत ज्यादा संदेह के घेरे में आते चले जा रहे हैं, और संदेह के घेरे में आने का जो एक बहुत प्रमुख कारण, कई कारण और भी उसमें बताएं, उसमें जो एक बहुत प्रमुख कारण है वो है कि विदेशों से जो धन आ रहा है, हमारे एनजीओज को विदेशों से धन जो मिल रहा है, तो विदेश जो है अब इस धन का उपयोग भारत पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। कि इनके डेवलपमेंट को रोका जाए तो ठीक है, उस धन का इस्तेमाल आंदोलन के लिए करेंगे, धरने पर बैठाने के लिए करेंगे, पर्यावरण को खराब करने के लिए करेंगे। तो इस तरह से उन धन का दुरुपयोग हो रहा है। और चूंकि इन एनजीओस को विदेशों से पैसा मिलता है तो जो पैसा देगा वो कुछ ना कुछ तो अपनी शर्तें भी रखेगा, तो ऐसे में पैसे के लालच में ये भी सब ऐसा कर रहे हैं। इस पर नियंत्रण किया जाना बहुत जरूरी है। और अभी तक हमारे यहां क्या व्यवस्था इसके लिए की गई थी उसकी भी चर्चा मैंने की है। इनफैक्ट जब आप इस तथ्य को जान लेते हैं, या कह लीजिए, आप देखिए मैं जो बात कर रहा हूं वो एनजीओ से संबंधित है, जो टॉपिक है वो एनजीओ है, लेकिन जब आप उस लेक्चर को सुन लेते हैं तब आपको पता लगता है कि नहीं, ये जो एक्ट अभी जो पारित हुआ है कल, ये तो चूंकि एनजीओ से संबंधित है तो ये एक्ट भी आपके लिए जरूरी है। अभी ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया है यह भी आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों, इस तरीके से फिर आपके समझ में आता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अब ये जो पूरा का पूरा एक्ट जो आया है, आप इसका जो पढ़ने का आपका एंगल होना चाहिए वो ये कि किस तरीके से हमारे यहां के जो एनजीओज हैं, स्वयंसेवी जो संगठन हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, वो जो विदेशी धन हासिल करते हैं उन पर सरकार का नियंत्रण हो सके। सरकार का नियंत्रण हो सके कहने का मतलब है कि स्पष्ट तौर पर अगर हम कहें, इस धन का दुरुपयोग न हो। दुरुपयोग न हो जब हम ये कहते हैं तो उसका क्या अर्थ है? बकायदे कल सरकार जब इस पर बहस हो रही थी तो सरकार ने ये कहा है कि हमने ये जो कानून लेकर के आए हैं, इस ये एनजीओ को दबाने के लिए, डराने के लिए, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नहीं है, बल्कि इस बात के लिए है कि विदेशी धन के माध्यम से जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवधान का डालने की कोशिश की जाती है, जो हमारे राष्ट्रीय और हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है उसको प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, उस पर नियंत्रण रखने के लिए लाया गया है। तो अब आप देखिए कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ गया ये, और एनजीओ पर एक तरीके से जो धन का वो दुरुपयोग करते हैं उससे भी जुड़ गया। ये इसका बेसिक पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया, ये इसका बेसिक है। ये इस पूरे के पूरे अमेंडमेंट को जब आप पढ़ेंगे, जब समझेंगे, केवल इसी आधार पर समझिए कि विदेशों से आपको धन मिला है, वहां बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, जो कंपनीज हैं वो आपको धन देते हैं, जैसे बिल गेट्स का बहुत बड़ा फाउंडेशन वो भी धन देता है हमारे यहां के एनजीओस को, तो वो धन दे रहे हैं और उस धन को सरकार चाह रही कि इसका सदुपयोग हो, इसका दुरुपयोग न होना हो, इसका दुरुपयोग न होने पाए। बस इस आधार पर आप इसके प्रोविजंस को पढ़िए, आपको एकदम से सारे प्रोविजंस एकदम याद हो जाएंगे। केवल याद ही नहीं हो जाएंगे बल्कि इसके बारे में आपकी एनालिटिकल पावर भी डेवलप हो जाएगी। दोस्तों, आज तो चूंकि वक्त नहीं है तो मैं अब उनके प्रोविजंस के बारे में आपसे बातें नहीं कर रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कल यदि संभव हुआ तो मैं इनके प्रोविजंस के बारे में आपको बताऊंगा और फिर आप देखेंगे कि कैसे किसी भी टॉपिक के बेसिक्स को समझ लेने के बाद उस टॉपिक के प्रति आपकी पकड़ बहुत गहरी, बहुत व्यापक हो जाती है, ये आप खुद महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, विजय शेरावत जयपुर से, यशपाल सिंह चौहान सियाणा राजस्थान से, विपिन गुप्ता, दीपक झा ललितपुर उत्तर प्रदेश से और जायसवाल आशु, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।